यहाँ यहाँ से बाएं मुड़ जाओ, हॉर्न बजाकर गेट खुलवा दो।
अरे ये तो मैडम,
अरे मोहतरमा है, सलाम मोहतरमा, आप ठीक हैं? सलाम जनाब,
सलाम,
खुशामदीद, बहुत अच्छा लगा।
मेहमान की खातिर तवाज़ो करो।
जी जरूर।
ये कौन है?
खालिद है, उसके माँ बाप यहाँ के माली थे। बाप मर गया, माँ भी गांव चली गई।
ये इसी बाग में पैदा हुआ है, ये बाग उसके बच्चों की मानिंद है।
दाएं तरफ मुड़ जाओ,
दाई तरफ मुड़ो।
बस बस यहीं पर, यही है वो जंगल। जनाब बाहर आ जाएं। तुम्हारे कदम अच्छे हैं कि बारिश होने लगी?
ये बाग तुम्हारा है? तुम्हारे डैड को खबर नहीं है?
नहीं।
और ये इमारतें भी तुम्हारी हैं?
हाँ, ये सभी।
इस जगह को अब तक मिसमार क्यों नहीं किया गया? ये हौस से भरा हुआ था।
अरे इधर साइबान में आ जाओ, बारिश कितनी तेज।
हाँ,
हो
तो
गई
अच्छी
है।
बात नहीं है।
इधर आ जाओ, तुम तो भीग गए।
बहुत ही हैरत अंगेज है,
तेज बारिश है।
ये बाग मेरे नाना का था।
सुना है कि वो मुझे बहुत चाहते थे, इसलिए जगह मेरे नाम कर दी। इस बारे में ना तो मुझे कोई खबर थी और ना ही डैड को।
जब माँ का इंतकाल हुआ तो मामू ने बताया।
वैसे मेरी माँ पेट की बहुत गहरी थी।
तो इस बाग पर तुम्हारे मामू ने अपना दावा नहीं किया?
मेरे मामू मुल्क से बाहर हैं, सनद भी उन्हीं के पास है, भाई की उनसे बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ की मालकिन मैं ही हूँ, लेकिन सब यही समझते हैं कि ये मिल्कियत मामू की है।
क्या किवान को भी इस बारे में खबर नहीं है?
नहीं, किवान इस बारे में कुछ नहीं जानता।
बिजली कड़की थी, आ जाओ।
आ भी जाओ।
आ जाओ ना, बारिश रुक गई है, अब कुछ नहीं है।
कहाँ जा रहे हो? वहां कुछ भी नहीं है, इधर आ जाओ।
यानी तुमने इसको गिराकर यहाँ इमारत बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा?
नहीं, मेरे मामू की इजाजत नहीं है। 2 साल पहले उनके पास थी, उन्होंने कहा सोच लो, ये जगह तुम्हारे पास है ही नहीं। कहा कि रुक कर देखो कि तुम्हारे डैड का क्या हाल होता है।
क्या मतलब डैड का क्या हाल होता है?
यानी उन्होंने हमारे ऐसे दिन की पेशबंदी कर रखी थी। हमेशा कहा करते थे कि तुम अपने डैड से बहुत अलग हो। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? यहाँ के बारे में कुछ याद आ रहा है।
आपके कदम बड़े पाक हैं, कितने अच्छे मौके पर आए हैं। ये लीजिए।
लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
आप भी लीजिए। अगर कोई काम हो तो बता दीजिएगा।
शुक्रिया।
तो इसीलिए लोग कहा करते हैं कि तुम्हारी अम्मी बहुत अमीर थी। क्या बहुत अमीर थी?
उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक झूठा एक्सीडेंट, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं केवान के साथ घर में थी, हमारी बावरचंद जेबा भी थी, वही जो अभी भी हमारे यहाँ काम करती है। एक दिन अम्मी पार्लर जा रही थी, बिना ड्राइवर के गाड़ी उठाई, जब पार्लर से निकली तो सामने से एक गाड़ी आई और उनको रौंद कर चली गई और वो वहीं मर गई।
बिना माँ की जिंदगी बहुत ही सख्त है ना?
खुदा तुम्हारा भला करे।
अच्छा तो अब ये बताओ कि इस जंगल के साथ क्या किया जाए।
काफी होगा कि इसमें से कई हजार मीटर को लेके बनाना शुरू कर दें, हमारी हालत सुधर जाएगी। ऐसी कि फरीदुन खान इस बारे में सोच भी नहीं सकेंगे।
सलाम जनाब, आपके आने की बरकत से हवा बड़ी अच्छी हो गई है, बारिश हो गई है।
कहाँ रहते हो, उस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग में?
मैं इस पूरे बाग में रहता हूँ, इन घासों में काम करता हूँ, थकान दूर हो जाती है। आपके लिए चाय लेकर आऊँ?
नहीं जरा इधर आओ, काम है तुमसे।
जी जनाब।
कहिए जनाब।
तो तुम ठीक हो?
शुक्रिया जनाब।
यहाँ अकेले रहकर उगता नहीं जाता
जनाब? ऊपर उन परिंदों के चहचहाहट मुझे उगताने नहीं देती है।
ये बाग कितने मीटर में?
अब तक तो इन्हें नापा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 20-30 हजार मीटर होगा।
जाओ तुम अपना काम करो।
कहाँ चले गए थे?
तुम्हारी अम्मी के साथ तुम्हारे डैड की शादी के बारे में कुछ समझा नहीं मैं। दौलतमंद माँ और बेफिक्र गरीब बाप, क्या आपस में इनका कोई रब्त था?
हाँ, मेरी माँ डैड के मामू की नवासी थी। मेरे नाना पहले तो इस शादी के मुखालिफ थे।
वो अपनी बेटी की शादी किसी मुलाजमत पेशा से नहीं करना चाहते थे।
अलबत्ता डैड की उस वक्त बहुत चलती थी। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद नौकरी से रिटायरमेंट ले ली और आजादाना काम करने लगे, और अम्मी के जरिए छोड़ी गई सारी दौलत फरीदुन खान एहतशाम के नाम हो गई।
ये छिपने की बेहतरीन जगह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आओ चलो चलते हैं। तुम्हारे इस खूबसूरत जंगल ने मुझे बहुत ही हैरत में डाल दिया।
ऐसा क्यों?
तुम भी अपनी अम्मी की तरह हो, इतनी बड़ी दौलत की मालिक होकर भी किसी को भनक नहीं लगी।
अगर मैं अपनी अम्मी की तरह होती तो तुम्हें नहीं बताती। उन्होंने अम्मी के साथ 20 बरस जिंदगी के बिताए, लेकिन बहुत सी बातें नहीं बताई।
ये तो तुम्हारा करम।
मैंने
है।
तो शादी से पहले ही बता दी।
मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी इस कदर करम फरमाई कि मुझ में लियाकत होगी। ऑफिस जाओगी या घर जाओगी?
कहीं भी नहीं, मुझे फिलहाल तुम कॉफी शॉप ही उतार दो। मुझे किवान को फोन करके बताना होगा कि मुझसे आकर मिल ले। थोड़ा अकेला रहना भी बुरा नहीं है मेरे लिए। फिर वहीं से फ्लैट चली जाऊंगी। 2 दिन से बिल्कुल ना सोने की वजह से लगता है बिस्तर पर जाते ही मुर्दों की तरह पड़ जाऊंगी।
मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा, अगर चाहो तो शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं कहीं बाहर से।
जाहिर है जाना चाहूंगी, लेकिन तुम्हारे घर वाले?
अम्मी को सुबह राग भेज दिया है, बाहर अपने शोहर के घर है, अमीर अली भी बाहर के पास है, अब क्या कहोगी?
आपका जो हुक्म मेरे सरताज।
मैं कह रही हूँ ना कि मैं नहीं आ सकती, इतना बहस क्यों कर रही हो? चलो देखते हैं क्या हो सकता है।
हेलो,
सलाम इंजीनियर साहब।
सलाम।
हेलो,
आप बैठ जाइए।
सलाम अलैकुम।
सलाम, कमाली साहब आपसे काम आइए।
अरे वाह इंजीनियर साहब।
सलाम,
कैसे हैं?
इससे ज्यादा आगे ना बढ़ो, अपनी हद में रहो।
मेहनत और काम से खुद को तंग मत करो।
आप लोग अपना काम देखें, कुरुश मेरे कमरे में और काम है।
ठीक है
ठीक है,
आइए अंदर।
आप अंदर चलिए। जी फरमाइए, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या बात है, जिस दिन से झगड़ा हुआ है आप तो ऑफिस ही नहीं आ रहे।
ये कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ तुमसे रब नहीं रखता। दूसरे लफ्जों में ये कि अपनी बकवास बंद करो, तुम बैठो यहाँ।
ठीक है,
दो एड्रेस दे रहा हूँ, पहले का पता तुम लगाओगे और दूसरे का सोहराब जाकर पता लगाएगा। और अब मैं तुम दोनों के सामने बहुत ही अहम बातें करने जा रहा हूँ, जरा गौर देना। म्यूनिसिपैलिटी की उस मिल्कियत के बारे में मुझे सारी की सारी तफसील चाहिए, और वो भी बहुत ही पुख्ता तरस पर, समझ गए तुम?
बहुत बेहतर।
और हाँ डॉक्टर कमाली, जितने पैसों की जरूरत पड़े खर्च करें।
ठीक है। माफ करें जनाब, ये आपकी मिल्कियत है या कंपनी की?
ये दोनों ही एहतशाम मैडम की मिल्कियत।
अच्छा, तो ये बात है। मैं ये कह रहा था कि ये एहतशाम मैडम नौकर या खादिम वगैरह नहीं रखना चाहेंगे।
जरा ध्यान रखो, दोस्ती और मुलाजिमत में कोई दीवार हायल होनी चाहिए, जरा समझो।
ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल तौर पर खुदाई का काम हो जाएगा।
ठीक है।
अगर गुस्ताखी ना हो इंजीनियर साहब, तो बता दूं कि म्यूनिसिपैलिटी सिर्फ मालिकाने जमीन को ही मालूमात दिया करती है।
मैं भी बता दूं कि जो वकील म्यूनिसिपैलिटी से 2 जानकारी हासिल ना कर सके, उसे मुर्दा नहलाने का काम करना चाहिए, कैसा रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि जितना पैसा खर्च हो करें, अब मेरे सामने आकर दोबारा ऐसी बातें नहीं करना। जहां पर के मालिक और किरायेदार की जरूरत है, ये उन लोगों के लिए है। अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी के इस कमरे से उस कमरे के चक्कर काटूं, तो ये बताओ कि मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, बताओ मुझे।
ये भी ठीक है, माफी बात का जवाब तो होता नहीं है।
आप भी तशरीफ ले जाएं, हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, जाइए।
ठीक है, इजाजत दें। शुक्रिया।
इंजीनियर साहब, अगर मैं कुछ बताता हूँ तो इसको मेरी लापरवाही ना समझें, बल्कि मैं तो
जानता हूँ। मैंने कहा कि आप 2 जमीनों की तफसील, मुकम्मल तौर से लंबाई चौड़ाई सब लेकर आएं। खुदाई और नक्शे का तो इजाजतनामा है, उनमें से एक को पास करा कर ले आएं। अपने काम से कायल करें, ना कि अपनी बातों और वजाहतों से। चाहिए।
जरूर जनाब, इंजीनियर साहब जरूर अंजाम पाएगा, जो आपका हुक्म है इंजीनियर साहब वो जरूर अंजाम पाएगा।
देखिए, इस अग्रीमेंट में 2 जगह इस्लाह की जरूरत है, वाकई मैं थक गया हूँ। यहाँ पर ठीक से इस्लाह की जरूरत है, यहाँ पर 2 कानूनी आर्टिकल का इजाफा होना जरूरी है, ये मुझे पसंद नहीं है।
इंजीनियर साहब, इस पर भी दस्तखत कर दें, ये नए प्रोजेक्ट से मिट्टी उठाने के बारे में है।
आप लोगों ने फिर उसी कंपनी में अग्रीमेंट कर लिया?
बहरहाल आप दस्तखत करें।
मैं दस्तखत नहीं करूंगा, बिला वजह उसकी कीमत ज्यादा है। इसे ले जाएं मुर्तजा को, दिखाएं वो क्या करता है।
फिर इंजीनियर साहब मेहरबानी करके इस पर मुवाफ़क़त कर दें।
ये क्या?
इसके बारे में हमने पहले बात की थी, मैंने कहा था कि ये मसला जरा उलझा हुआ है, आप जरा इस पर कुछ लिख दें तो।
ये सब मुर्तजा का काम है। देखिए, मैं आज वाकई बहुत थक गया हूँ, मैं वाकई में पागल हुआ जा रहा हूँ, ये सब उठाकर ले जाएं।
इंजीनियर साहब इस चेक पर दस्तखत कर दें, ताकि मैं अगली कार्रवाई कर सकूं।
आप इस प्रोजेक्ट की कानूनी कार्रवाई को कर रहे हैं ना?
जी हाँ बिल्कुल।
मेरे सामने इतनी फाइलें लाकर फैला दी हैं कि वो सब भूल जाऊंगा।
जनाब मुर्तजा साहब जरा कंजूस हैं, उनके दिल से जल्दी निकलता नहीं।
उन्हें अपना काम करना अच्छी तरह आता है, इंजीनियर होशमंद साहब इस काम में बहुत ज्यादा माहिर है। जाइए इसे ले जाइए। ये खाली क्यों
है? लाइए लाइए, मैं उठा लेता हूँ। अलबत्ता इंजीनियर साहब इसके सभी कानूनी काम अंजाम पाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, आप भी जरा बर्दाश्त करने की कोशिश करें इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब आपको तो पता ही है कि बड़े कामों में सब्र व तहम्मुल की बहुत खास जरूरत होती है।
मेरे ख्याल से बड़े कामों की अंजाम दही में टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए। आप एक काम करें, तशरीफ ले जाए।
जी
रहमती मैडम, मेरे लिए 1 कप कॉफी भेजें, बहुत थक गया हूं।
माफ करें, मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया।
जनाब ये यहां रह गया, ये रह गया, इसे लेकर जाएं।
जी
अजीज दादी, जानती हैं आप भी मरहूम दादा जान से कुछ कम नहीं है। ये देखिए इस अखबार के पीछे ही पड़ गई हैं।
खुदा उनकी मगफिरत करे, उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था।
मुझे भी पसंद है, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता।
अब जबकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, रुको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। लिखा है कि जर्मनियों के जरिए यहूदियों के सिलसिले में किताब के मौलिफ मिशेल फोनका ने एतराफ किया है और लिखा है कि दूसरी आलमी जंग के दौरान उसके बचपन के जमाने में ईजा रसानी की याददाश्त सरासर झूठी है। यूरोप में ये किताब सबसे ज्यादा फरोख्त हो चुकी है। इसका 18 जबानों में तर्जुमा हो चुका है। इस किताब पर फिल्म भी बन चुकी है।
50 वर्षों तक लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद अब जमीर कचोके लगा रहा है।
ये बिल्कुल वही होलोकास्ट वाला मामला लगता है। लगता है कि तुम बिल्कुल अखबार नहीं पढ़ती हो।
अजीज दादी, मेडिकल लाइन में पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, वक्त ही कहाँ मिलता है। कभी कभी पापा की जिद पर एक आधी किताब पढ़ लेती हूँ, पर अखबार के लिए वक्त नहीं निकाल पाती।
तुम्हारे दादा जुम्मेरात का अखबार 2 मरतबा पढ़ा करते थे, क्योंकि जुम्मे को अखबार नहीं निकलता था। इसको देखो, यहाँ लिखा है कि एक आदमी ने 10 शादियां की और सभी एक साथ रहा करती हैं।
कैसा हो सकता है?
फिलहाल तो ऐसा ही है, तुम देखो।
जरा लाएं, मुझे तो दे दादी, मैं भी तो पढ़ूं।
ईरान में नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है।
आप मजाक कर रही हैं ना अजीज दादी?
ये हिंदुस्तान भी अजीबोगरीब मुल्क है। मैं और तुम्हारे दादा 3 हफ्ता वहां रह चुके हैं।
तो आप हिंदुस्तान भी जा चुकी हैं?
हाँ, तब तुम बच्ची थी। वजारत तालीम व तरबियत ने एक दौरा रखा था, हम भी उसी में गए थे।
आप बैठिए दादी, मैं जाती हूँ। लगता है मेरा पैर अभी कुछ ठीक है।
हाँ, तुम चलोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
सलाम, कहाँ हो तुम लोग? अकेलेपन से उकता गई हूँ मैं, अंदर आ जाओ। अजीज दादी, आपके पोता पोती आ गए हैं।
उनका बहुत बहुत खैर मकदम है।
हम आ गए हैं अजीज दादी, सलाम।
सलाम,
सलाम सबको।
मैं तुम्हारे सलाम,
सलाम, सलाम,
सलाम,
सलाम, सलाम,
सलाम अजीज दादी।
ठीक हो?
आप ठीक हो?
तो मैंने
कैसी
हो?
जी, बहुत बहुत
तुम लोगों की टूटी फूटी डॉक्टर अजीज दादी का बोझ बनकर रह गई है।
अरे बेटी, कैसी बातें कर रही
है। सभी डॉक्टर नाशुक्री करते हैं, इतना ज्यादा कमाई करते हैं फिर भी नाशुक्री करते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुछ बोले और तुम अपनी राय जाहिर ना करो।
तो क्या हो गया, मेरा बेटा बोलता है तो अच्छा लगता है। बच्चों, क्या तुम लोगों ने खाना खाया?
अजीज दादी, क्या ऐसा हो सकता है कि अमीर अली किसी के साथ हो और वो अब तक भूखा रह सके? अजीज दादी, उन्होंने खाना क्या खिलाया? इतना एहसान जता रहे हैं, 1 हफ्ता रुक गया तो इनका क्या हाल होगा?
सुबह को चची जान को इराक भेज दिया, बड़ी जिद करके राजी किया गया। फिलहाल अमीर अली हमारा मेहमान है।
अजीज दादी, इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया।
ऐसा क्यों बेटे?
स्कूल की वजह से। इन चंद दिनों के अंदर मैं अमीर अली सीना बनने वाला हूँ।
यही हफ्ता हफ्ता स्कूल जाने से अमीर अली सीना बन सकते हो।
अजीज दादी, ये सुनिए, यहाँ लिखा है 2 औरतों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने शोहर को मार डाला। जो मर्द नाकारा हो उसका मर जाना अच्छा है।
ये भी एक खबर ही है।
डरो नहीं, उनके बस का नहीं है कि तुम्हें मार सकें।
क्या?
तुम्हारा पैर कैसा है? बेहतर है?
हाँ बेहतर है, पहले से बेहतर।
उस तेल और मालिश का असर हो रहा है।
तुम फुटबॉल देखना भूल गए क्या?
ओ, मैच शुरू हो गया होगा। गाड़ी में हमें इसने परेशान करके रख दिया।
मुर्तजा बेटे, वो काम कर दिया तुमने?
गोल अजीज दादी, गोल, गोल अजीज दादी, गोल। आए देखे क्या गोल मारा है।
जरा चलू तो देखू तो सही, मेरे बेटे
गोल,
की टीम
गोल,
ने गोल
अजीज
किया
दादी,
है।
गोल, गोल, गोल।
देखे क्या गोल मारा है।
अरे बेटा, किसने गोल कर दिया?
देखिए ना।
अच्छा अच्छा, मैं भी तो देखू जरा।
अजीज दादी, क्या गोल किया उन्होंने, आपको देखना चाहिए था। आप यकीन नहीं करेंगे अजीज दादी, इतना बढ़िया खेले वो लोग, आपको देखना चाहिए था।
तुम जब अपना फैसला बताना चाहो तो मुझे भी कुछ बात करनी है।
तो फिर आज रात तुम क्यों आए हो?
सोचा अमीर अली को हटाने के बाद तुम्हारे पास आ जाएं, हम तुम पर बोझ बनना चाहते हैं।
मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो, कहीं तुम्हारा कोई दूसरा प्लान हो
कि मुझे फिर से बेवकूफ बना सके। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि फूलों के एक गुलदस्ते को मोहब्बत की निशानी समझूं। वैसे अगर तुम चाहते हो तो तुम इसको फेंक सकते हो।
किसी गुलदस्ते का फेंक देना अहमियत नहीं रखता, अहम यह है कि बस देखो कि मोहब्बत और वफादारी कहाँ है।
वही तो ढूंढ रही हूँ कि अभी तक है भी या नहीं।
तो अच्छे से ढूंढो।
हाँ है, मैं जानती हूँ। मुर्तजा को जाने दो, उसे जलन हो रही है।
बहरहाल तुम लोगों को बड़े काम के लिए तैयारी करनी होगी, उसके बारे में सोच लो।
उसका कहना है कि ये तुमने अपने साथ क्या कर डाला, ईंट उठाई है क्या?
सलाम अलैकुम।
सलाम।
सलाम।
जनाब माफ करें इंजीनियर साहब, थोड़ी देर आपको जहमत दूंगा, फिर आपसे रुखसत चाहूंगा।
आइए बैठिए, बताएं क्या किया।
इंजीनियर साहब, अर्ज करूं कि तकरीबन 26,000 मीटर की पक्की रजिस्ट्री वाली सनद फरूक उज़्मा मनोचेहरी इब्ने इनायत के नाम मौजूद है कि जिसमें एक सेंटीमीटर भी इस्लाह की जरूरत नहीं है। ये हीरे का एक टुकड़ा है, वाकई में हीरा है इंजीनियर साहब, लेकिन उसकी असल सनद नहीं है। नंबर तो है लेकिन ड्राफ्ट नहीं है। ये आपकी खिदमत में है।
लाइए।
आपकी खिदमत में।
बहुत अच्छी बात है, एक नया एड बनाने को दे दें बगैर एड्रेस के। सोहराब और कुरुश के साथ मिलकर काम करें, हफ्ते में एक मर्तबा कस्टमर को साइट दिखाने ले जाएं ताकि जो कस्टमर हीरे की तलाश में है देख लें, ना कि वो बेघर लोग। समझे?
जी जनाब।
आप लोग जा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दे।
जी जनाब।
बहुत बहुत शुक्रिया, माफ करें मैंने आपका वक्त लिया।
बड़ा मेहरबानी।
खुदा हाफिज।
इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे?
नगीना ठीक रहेगा ना? क्यों?
वही जिसकी अभी बात कर रहे थे। मलेशिया में तामीर शुदा इमारत का नक्शा और मंजिलों की तादाद को सब कुछ उसी के मुताबिक हमने इंटरनेट से लिया है और अंजाम दिया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अमल करने वाला ऐसा आर्किटेक्ट हो जिसकी शख्सियत वैसी ही हो और वो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने की सलाहियत रखता।
तुम खुद करोगे?
मैं?
हाँ। तुम खुद को कमतर क्यों समझते हो? क्या जरूरी है कि तुम्हारी आंखें इस तरह से हो? मेरे ख्याल से तुम जापानी इंजीनियर से कहीं बेहतर हो जिसने मलेशिया में इस कॉम्प्लेक्स को बनाया।
वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अब तक 2 मंजिला इमारत बनाने का तजुर्बा नहीं है।
तो ठीक है, तजुर्बा आ जाएगा। सलाहकार रख लो, 4 अध बड़े तजुर्बेकार सलाहकार ले लो, उसका पैसा भी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है ना? समझ गए? सोहराब जल्दी जाओ, जलजला आ गया, बाद में इस बारे में बात करूंगा।
सलाम हो बड़े बॉस पर, देखू तो जरा।
सलाम बड़े बॉस के भाई।
कितना अच्छा।
इसे छोड़ो तुम, जाओ बैठो शरीर लड़के। क्या हुआ, मेरी याद आ गई?
मुर्तजा भाई आ रहे थे, मैंने भी कहा कि रिश्तेदारी निभाने मैं भी चलता हूँ साथ में।
तो जनाब एक काम करो, इनाम के तौर पर एक चॉकलेट उठा लो वहाँ से।
मेरे लिए एक चाय भी मंगवा लो ना।
शरारत शुरू, बाहर जाकर चाय पियो तुम। कितनी जुबान चलाते हो तुम।
अपने पैसे मुझे दे दो, मेरी जुबान तुम रख लो।
अच्छा,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
उनकी आमद तो मेरे लिए बाइस फख्र है, साहिब इख्तियार तो ये हैं।
मैंने सोचा तो फिर आप लोग अकेले रहें ताकि दो भाई आपस में बातें करें।
कल की रात अच्छी गुजरी?
हाँ, कल की रात भी अच्छी गुजरी। मुर्तजा और बहार ने सोचा कि तुम अजीज दादी के घर मिलोगे, हम भी वहीं गए। मरियम मैडम भी वहीं मौजूद थी। कल रात बहार बहन ने भी तुम्हारी बहुत तरफदारी की।
और तुम? तुमने क्या किया? मेहनती आदमी मेरी तरफदारी की?
अरे भाई, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ तुम लोग मेरा मूड खराब कर देते हो। अलबत्ता मैंने अपना काम कर दिया। देखो मुर्तजा तुमसे जलता है।
अच्छा, वो क्यों?
इसलिए कि तुम्हारे पास दौलत है।
कल रात ये सब मैंने ठीक ठाक किया है, तुम भी इस पर नजर डाल लो तो कोई हर्ज नहीं होगा, फिर मैं कुरुश को दे दूं।
कल रात तो मुझसे जलन दिखा रहे थे, उन सबको ठीक ठाक कर दिया?
नहीं नहीं, कल रात में मैं फिल्म देख रहा था, वो तो उन सब में लगा हुआ था।
तुम भी शर्माओ मत, जो दिल में आए कह दो, ठीक है? मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा।
ठीक है, इन सब पर एक निगाह डाल लूंगा। रहमती मैडम।
जी जनाब।
अमीर अली मेरी अम्मी से बात करना चाहता है, मेहरबानी करके वहाँ का नंबर लगाए तो।
जी।
तो अगर किसी के पास अमीर अली जैसा कोई होगा तो बातों की कमी नहीं होगी।
तुम भी ये बात जान लो।
हाँ ये तो है, तुमसे काम था, इन सबको एक मर्तबा देख लो, अगर कोई मुश्किल नहीं है।
अभी नहीं देख सकता हूँ, बाद में देखूंगा।
ठीक है, तो मैं फिर बाद में आता हूँ।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
ये लो घंटी बज रही है।
हेलो।
सलाम अम्मी, आप ठीक हैं?
जी, कल रात हम लोग अजीज दादी के घर गए थे, बाहर ने भी नूडल्स बनाए थे, बहुत ही अच्छे थे, बस आपकी कमी थी।
अम्मी, आपको वहाँ बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमारी फिक्र नहीं होगी।
यूनुस भी ठीक है, अपने ऑफिस में है।
जी ठीक है, जरा एक मिनट।
वो सिगरेट पी रहा है। मेरी अम्मी अभी उसे फुर्सत नहीं है, जब वक्त मिलेगा तो आपको कॉल कर लेगा। खुदा हाफिज।
क्या अभी ये बात बोलनी जरूरी थी?
मेरे भाई यूनुस, बड़ों ने हमें यही सिखाया कि झूठ मत बोलो।
क्या अम्मी ने सिगरेट के बारे में पूछा था जो तुमने चुगली कर दी? क्या मैंने सैकड़ों मर्तबा तुम्हें नहीं बताया कि ये सब बातें तुम्हें छोटा कर देगी, तुम्हें नजरों से गिरा देगी?
अरे भाई, अम्मी ने पूछा कि यूनुस क्या कर रहा है, मैंने भी कहा कि वो काम में मसरूफ है। कहने लगी अगर मसरूफ है तो मैं बाद में फोन करूंगी। मैं आया और दरवाजा खोला तो देखा कि तुम अपने काम में मसरूफ हो, उनसे कह दिया कि बाद में फोन करें।
अभी अम्मी तो आखिर समझ गई ना कि मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें कमजोर बनाती हैं। क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम्हारी उम्र के लड़के तुम्हें ये कहें कि ये कैसा बदतमीज और फजूल और बकवास लड़का है? क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा, बताओ?
तुम्हारे लिए भी बड़े अफसोस की बात है कि इतनी सलाहियत के होते हुए भी सिगरेट पीते हो। दरअसल हम दोनों के लिए अफसोस की बात है, देखते हो ना सलाहियत वाले लोग कितनी जल्दी गुजर जाते हैं।
ठीक है, अब तुम बाहर चले जाओ। अमीर अली, बाहर चले जाओ।
चाय नहीं आई मेरी।
बाहर जाओ, मुझे काम है। अमीर अली,
जाता हूँ।
सलाम।
सलाम। मेरे सरताज, मुझे कैसे याद किया?
कब याद नहीं करता तुम्हें, कहाँ हो?
जब डैड मुल्क से बाहर हो तो मेरी जैसी लड़की को कहाँ होना चाहिए, घर पे ना, और कहाँ हो सकती हूँ।
आज रात का क्या प्रोग्राम है?
कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर मैं तुम्हारे पास आऊं या तुम मेरे पास आओ या इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो बोरियत महसूस होगी ना।
ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा।
नहीं, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि डरती हूँ कि कहीं आदत ना बिगड़ जाए मेरी।
ठीक है, अच्छी बात है। तुम कोशिश करना कि 7 बजे के करीब यहाँ पहुंच जाओ, बस ऊपर ना आना, एक मैसेज कर देना क्योंकि अभी अमीर अली यहाँ पर है, समझ जाएगा।
जरूर। बाय बाय,
खुदा हाफिज।
क्या वो बिल्कुल ही गधा है?
नहीं, वो बिल्कुल भी गधा नहीं है। वक्त कैसा गुजरा?
तुम कैसी हो, सब ठीक है, कैसा चल रहा है?
थोड़ा थोड़ा, फोन पर तो बताया था बिल्कुल मोम, लेकिन है बहुत होशियार।
वैसे कोई भी मेरी बेटी से ज्यादा होशियार और समझदार नहीं हो सकता, ठीक है ना?
ऐसा 110% ठीक है। मेरा तोहफा कहाँ है?
नीचे तो आओ जीबा, वो मेरा सूटकेस लेकर के आ जाना।
बहरहाल, अगर ये सोचते हो कि यहाँ जगह कम है और आसानी से काम नहीं किया जा सकता तो इसी कॉम्प्लेक्स में कोई दूसरी जगह किराए पर ले लो। काम बहुत धीरे चल रहा है मुर्तजा, ये क्या है, बहुत ही धीरे चल रहा है, ये क्या है?
सब मुकम्मल हो रहा है यूनुस, एडवांस बुकिंग का कोटा खत्म हो रहा है।
नहीं, ये तुम्हारी भूल है, एडवांस बुकिंग का सिलसिला कभी खत्म नहीं होना चाहिए।
इसका क्या मतलब है कि खत्म नहीं होना चाहिए? कोटे के लिहाज से एडवांस बुकिंग 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। क्या तुम फरीदून का भी काम अंजाम देना चाहते हो?
मैं अपना काम कर रहा हूं, बनाऊंगा और बेचूंगा, बनाने और बेचने का काम कभी खत्म या पूरा नहीं हुआ करता।
देखो, एक फ्लैट एक ही कस्टमर को मिलेगा, ना कि इससे ज्यादा।
देखो मुर्तजा, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मेरा काम मुझे ना सिखाओ। उन 100 लोगों में से जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, 50 लोग अपनी किस्तें अदा नहीं कर सकते हैं। इस अग्रीमेंट के मुताबिक मैं उनका नाम काट दूंगा, साल के आखिर में जब आएंगे तो उनका पैसा लौटा दिया जाएगा।
देखो मेरे भाई यूनुस, ये एग्रीमेंट हम उन पर थोप रहे हैं।
ये थोपना क्या होता है? इतने लोग आए, दस्तखत किए, क्या मैंने उनके साथ जबरदस्ती की है? थोप रहे हैं, थोप रहे हैं, थोप रहे हैं।
ठीक है, तो ये तो बताओ, ये लोन जो हम उनके नाम पर ले रहे हैं उसका क्या होगा? ये पैसे जो हमने उनके नाम पर लिए उसका क्या, क्या ये जायज है?
क्या हमने यहाँ स्लॉटर हाउस खोल रखा है? क्या यहाँ पर कसाई की दुकान है और हम जायज और नाजायज नहीं समझते? अरे भाई इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, म्यूनिसिपैलिटी है, अदालत का वजूद है, रजिस्ट्री ऑफिस है, वो भी अपना काम करते हैं। जायज है ना जायज है?
सुनो यूनुस, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई बाज पुर्स ना भी करे फिर भी एक दिन ऊपर वाले को जवाब देना ही होगा, जवाब देना ही होगा।
ओह, मुझे डरपोक लोग बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं सच में मुर्तजा।
तुम्हें जवाब देना पड़ेगा।
ठीक है, जायज है ना जायज है, यूनुस एक दिन मलकुल मौत आएगा और तुम्हें जवाब देना होगा, तुमसे बासपुर्स करेगा। जवाब दे देंगे। रहमती मैडम मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।
अच्छा तो मेरे मोहतरम मुसाफिरों को कहाँ जाना है? पहली मंजिल कौन सी है? कहाँ तशरीफ ले जाएंगी? स्टडी सेंटर?
मुझे भी वहीं उतार दो, मैं आरजू के साथ वापस आ जाऊंगी।
मरियम, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं?
नहीं शुक्रिया, बस मेरा बैग गाड़ी में रहने देना, जब तुम घर वापस आओ तो साथ लेते आना।
ठीक है। मेरी मुअज्जिज़ खातून दूसरा स्टैंड कहाँ है?
मैं भी मरियम के साथ जाती हूँ, अम्मी के ना होने की वजह से तबीयत बोर हो जाती है। मेरा भी दिल करता है कि सेंटर का माहौल करीब से देखूं। अजीज दादी और मरियम ने डॉक्टर हसनी मैडम की इतनी तारीफ की है कि मिलने का दिल करता है, देखना चाहती हूँ कि वो कैसी दिखती हैं।
मैं ये कह रहा था कि क्या तुम्हारे भाई ने कोई दूसरी नौकरी करने का हुक्म दिया है जो वहाँ जाना चाहती हो?
और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम रुक कर मेरा इंतजार करो।
मेरा भी दिल नहीं करता है कि तुम अकेली रह जाओ, टैक्सी से चली जाओ।
तो फिर एक मेहरबानी करो, ये गाड़ी मेरे पास रहने दो, मरियम के साथ मैं वापस आ जाऊंगी और तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ।
ये तो सही बात है।
हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, यहीं पर इंतजार करूंगा।
देखो कंजूस आदमी अपनी गाड़ी हमें नहीं देना चाहता।
तुम बच्ची हो, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है।
कंजूस आदमी।
कंजूस नहीं है, अगर तुम्हें देर ना हो रही हो तो आइसक्रीम खाएं।
ठीक, चलो उस दिन की खातिर जब हमारा
हो?
खाली होगा।
मैं हमेशा तैयार रहती हूँ।
तो चलो फिर चलते हैं।
ये पुरानी मस्जिद देखिए, इसका क्या मतलब है जो तुम कह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमारी नजरों से छुप सके।
उसके अंदर क्या ढूंढ रहे हो तुम?
कोई अच्छा सा प्रोग्राम।
इसे बंद करो, चलकर थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं, वो भी एक साथ।
अजीज दादी अभी मुझ पर फर्ज नहीं है।
क्या मतलब कि फर्ज नहीं है?
अजीज दादी अभी मुझ पर वाजिब नहीं है, तो फिर क्या बिना वजह खुद को परेशानी में डालूं?
अमीर बेटे, अगर मश्क करोगे और तैयारी रखोगे और जब फर्ज की उम्र तक पहुंचोगे तो फर्ज की अदायगी आसान हो जाएगी।
अजीज दादी फिक्र ना करें, अगर यूनुस को कहा होता कि इस टेलीविजन के साथ सैटेलाइट सिस्टम भी खरीद ले तो खूब मजे करती।
इस सैटेलाइट में ऐसा क्या है जिनके तुम लोग शौकीन हो?
अजीज दादी इश्क है, देखो तीन 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 तीन
دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سراغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. از این خواب زمستونی شبیه که پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم، دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.